نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Amazed by Allah's small husna, इस सीरीज में से आज हम अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम अल आखिर. हम इस वक्त नामों का वो सिलसिला कर रहे हैं कि जिसमें दो मुख्तलिफ नाम एक दूसरे की ज़रूरत हैं, यानी इससे पीछे हमने अल अव्वल को देखा था और आज हम अल आखिर को देखेंगे. और जब ये दोनों नाम पूरे हो जाते हैं तो वाकई अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में एक परफेक्शन का और एक हमेशगी का तसव्वुर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाता है. और ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमें तेरे एक एक नाम के साथ वो खूबसूरत ताल्लुक जोड़ने वाला बना दे कि जो ताल्लुक हमारी रूह की ग़िज़ा बन जाए. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में जब महसूस करता है तो उसको ऐसे लगता है कि मैं तो इससे बगैर बिल्कुल गुजर रहा था. यानी जैसे अब माशाल्लाह इस सीरीज़ का जो फीडबैक आता है और जो साथी सोचते हैं, बिल्कुल वही फीलिंग्स हम सभी की हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हम उसी मालिक को जानते हों, उसी के नाम की इबादत करें, उसी के साथ हमारा ताल्लुक जुड़े और फिर उसके बाद हम उससे वो कुर्ब महसूस ना करें. तो गोया कि हम कुछ चीज़ों को रस्मन कलामन करते हैं, इस वजह से होता है. तो जब ज़िंदगी में अल्लाह ताला का कुर्ब बढ़ता जाएगा, जब आपके पास मार्फत होती जाएगी, उतने ज़्यादा आप अपने मालिक को पहचानते जाएंगे. आइए देखते हैं कि अल अस्माउल हुस्ना में से इस नाम अल आखिर में आज आपके मेरे लिए क्या है. हमेशा की तरह पहले से ज़रा सा सोचिए, अपने आप को एहसास दिलाइए कि आखिर इस नाम में क्या होगा. तीन लफ्ज़ हैं सिर्फ, आखिर आखरा या आखिरू से, लेकिन जब हम इनके अंदर डूबकर गौर व फिक्र करते हैं, जब इनका हक अदा करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही लगता है गोया के अल्लाह ताला के इस नाम में ही सारी दुनिया सिमटी हुई है. तो अल्लाह ताला का ये खूबसूरत नाम अल आखिर, जिसको आप कह सकते हैं, असल में आप देखें तो आखिरी बात है. जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को महफूज करते जाएंगे, मजबूत करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको ये महसूस होगा कि आपका मेरा आखिरी अंजाम क्या होने वाला है. एक होता है आखिर, एक है अल आखिर. हम अल आखिर के साथ अगर अल्लाह ताला को देखें तो सबसे पहले अल आखिर लफ्ज़ के लुग़वी मानी अरबी में, बल्कि आखिर का लफ्ज़ कहिए सबसे आखिरी, दी लास्ट. हम कहते हैं आखिरत आने वाली है. अरबी के इस लफ्ज़ को समझ लीजिएगा, जब आखरा होगा खा की ज़बर तो दी नेक्स्ट, और जब खा की ज़ेर होगी तो दी लास्ट. जी, हम कहते हैं ना यौमुल आखिरा, यानी वो दिन जिसके बाद कोई भी दिन नहीं आने वाला. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा स्कूल में जाए तो वो कहता है व्हाट इज़ माय नेक्स्ट पीरियड, राइट, वो होगा आखरा. लेकिन वो कहते हैं व्हाट इज़ माय लास्ट पीरियड, आखिरी पीरियड क्या है, तो वो होगा आखिरा. तो आखिरत वो दिन है कि जिसके बाद कोई दिन नहीं आएगा, वो इस दुनिया के कैलेंडर के रुकने का दिन होगा. अल्लाह सुबहाना ताला का नाम, अल्लाह का प्यारा नाम, अल अव्वल के बाद अल आखिर क्या है, आप इसको सोच लीजिए. ये आखिरत से जुड़ा हुआ है. ये वो नाम है जो आपको मुझे आखिरत की याद दिलाता है, और ये वो नाम है कि जिसको पढ़ने के बाद मेरे दिल दिमाग इरादे पे आखिरत छा जाएगी. इस नाम का सबसे बड़ा तकाजा जॉइंट पे आपके मेरे सामने आने वाला है वो क्या है कि आखिरत में जियो, आखिरत ओरिएंटेड जिंदगियां हो तुम्हारी. सिर्फ दुनिया में खप खपा के यहाँ के मसाइल को हल करके और ना हल होने के बाद भी हसरतों दिल में लेकर जाने वालों, अल्लाह के इस नाम अल आखिर को देखो. क्योंकि ये नाम इंसान के अंदर एक ऐसी तब्दीली पैदा कर देता है कि आप इस दुनिया में रहते हुए किसी और ही दुनिया के मुसाफिर लगते हैं. लोग कहते हैं आपको क्या हो गया, आप क्या खोए खोए रहते हैं, आप हर वक्त इतने फिक्रमंद के, खा लेना सब खाते हैं, कर लेना सब करते हैं, अच्छा कुछ नहीं होता, अच्छा वो है ना अल्लाह माफ़ करने वाला, वो है ना बख्शने वाला. इस किस्म के जुमले ऐसे बंदे के दिल दिमाग पर ज़र्रा सा भी असर नहीं डालते. इतना गैर मानूस होता है इंसान इन बातों से, कहता है कि तुम जो मर्ज़ी कहो, मैं अपनी आंखों देखे अपनी आखिरत को ख़राब नहीं कर सकता. तो अल्लाह ताला का नाम अल आखिर है, आखरा नहीं है. ये बहुत बुनियादी नुक्ता जो आपके सामने इस वक्त कि अल्लाह ताला का ये नाम आखिर, सबसे आखिर में आने वाला, सबसे आखिरी चीज़. और आप जितना इस नाम पे गौर व फिक्र करते जाएंगे, ऐसे लगेगा कि एक ऐसे समंदर के अंदर आप कूद पड़े कि जिसकी तह नहीं मिल रही और आप नीचे से नीचे डूबते जा रहे हैं। तो लफ्ज़ अल आखिर क्या है? सबसे आखिर, दी लास्ट। हर एंगल से, जमाने के एतबार से आखिरी, कलाम के एतबार से आखिरी, इंसान मुकाम के एतबार से इसको सोचे तो आखिरी, यानी हर चीज़ की इंतहा अल्लाह की तरफ है। इला रब्बिका मुंतहा, रब की तरफ तेरी इंतहा है। कोई भी चीज़ जब अपनी इंतहा को, पीक को पहुंच जाती है ना, तो आखिर में पीक भी है, इंतहाई। केटू पहाड़ पे चढ़ गए, वो उसकी इंतहा है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, ये उसकी इंतहा है। अल्लाह की ज़ात आखिर की सूरत में आपके मेरे सामने किस तरह से अपना वजूद दिखाती है कि दुनिया में जो चीज़ पूरी हुई, अगर उसको इंतहा मिलनी है तो रब के नाम से मिलनी है। रब की ज़ात है वो ज़ात कि जो तुम्हारी चीज़ों को इंतहा तक पहुंचाती है। आज तक जिंदगी में कोई भी काम करके पूरा किया हो, जब उसकी आखिरी चीज़ हो, जिसको आप ग्रेजुएशन कहते, सेरेमनीज कहते, इंतहा कहते, तकमील कहते, खत्मुल कुरान की दुआएं कहते, अल आखिर, अल आखिर वो हस्ती है जो आपके मेरे प्लान्स को, आपके मेरे इरादों को मुकम्मल करता है। कपड़ा सीना शुरू किया, पूरा हो गया, अल आखिर का कमाल है ये। आपने खाना पकाना शुरू किया, खाना पक के तैयार हो गया, अल आखिर, हर लिहाज से सबसे आखिर, जमाने के एतबार से, मुकाम के एतबार से। इसी तरह वो हस्ती जो सब मौजूदात के फना होने के बाद भी बाकी होगी, कुल्लु मन अलैहा फान। अल्लाह ताला आखिर के तौर पे वो हस्ती है कि जब सब कुछ नहीं होगा तो वो होगा, लिमन इल मुल्कुल यौम लिल्लाह इल वाहिद इल कहार। यानी सब खत्म हो गया। सब मौजूदात को जहन में लाइए, हजर क्या, शजर क्या, पहाड़ क्या, गलेक्सीज क्या, वो बड़ी बड़ी चीज़ें जो आपको हुबल कैमरे के साथ दिखे या किसी और से, ये सब कुछ जब ख़त्म होगा ना, तो आखिर में अल आखिर की हस्ती होगी। आप देखिए कि चीज़ें गिरती हैं, टूटती हैं, कुछ जो मजबूत होती है बच जाती हैं। हादसा होता है, कुछ लोगों को चोटें लगती हैं, कुछ बच जाते हैं। जो बच जाता है वो मजबूत होता है। कई बर्तन हाथ से टूटे, एक बच गया क्योंकि वो मजबूत था। तो अल्लाह की हस्ती अल आखिर मजबूतियों में, ताकत में, कुव्वत में, अपने मुकाम और मर्तबे में ऐसी है कि जमाने के हवादिस का उस पर कोई असर नहीं होता। आंधियां आए, तूफान आए, कोरोना वायरस फैल जाए, कोई बीमारी फैल गई, कोई बैक्टीरिया आ गया, अल आखिर बाकी रहेगा। अच्छा, आपको मुझे जरा सा एहसास हो जाए ना कि हम बाकी रहेंगे, तो देखिए जरा हम पे कर दे अल्लाह अपना रहम कि हम कैसी अकड़ दिखा। हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं मरूंगी। मैं इतने ऊंचे पहाड़ से छलांग लगा दो, मैं बच जाऊंगी। मुझे जहाज से नीचे फेंक दो, मैं बच जाऊंगी। हमारे अंदर तो अकड़ आ जाए, तकबर आ जाए। और अल्लाह की हस्ती वो है जिस पे जमाने के नशेबो फराज का कोई असर नहीं होता, और इसी तरह इसके वजूद की कोई इंतहा नहीं। समंदर देखा है कभी? बहुत दफा देखा होगा। जब मैं समंदर के सामने खड़ी होती हूँ ना, तो उस वक्त मैं इस चीज को महसूस करती हूँ कि मेरे मालिक, इसका किनारा नहीं दिखता, इसका राइट टू लेफ्ट और अंदर डेप्थ नहीं दिख रही, तो तेरी क्या होगी? महसूस करिए जरा, देखिए अल्लाह को उसकी मखलूकात के एतबार से ही थोड़ा सा अगर हम समझ लें तो शायद कुछ समझ जाए, वरना लैसा का मिसली ही शय। जब बर्फ पड़ती है ऐसे लगता है खत्म होगी, नेवर एंडिंग, नो नथिंग। जब तेज बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो लगता है बारिश खत्म होगी, नहीं खत्म होगी ना। सर्दियां आती हैं, लगता है सर्दी खत्म होगी, गर्मी आती खत्म होगी नहीं, तो ये फिर सब किधर जाता है। तेज बारिशें भी रुक जाती, बर्फें भी खत्म हो जाती। या आखिर की जात जिसके अपने वजूद की कोई इंतहा नहीं, जिसने ऐसे बहरे बेकरां सात बड़े बड़े समंदर मुंह खोल कर दुनिया में डाल दिए कि इस समंदर के किनारों पे खड़े हो के देखो, इस समंदर की कोई इंतहा नहीं, तो बताओ मेरी क्या। आसमानों को देखिए, फिजाओं को देखिए, यहां से लेकर आसमान तक 2100 साल का फासला, अल आखिर ने हर चीज को इंतहा दे दी। इसी तरह आप देखिए कि अव्वल के मुकाबिल ये लफ्ज़ बोला जाता है, यानी जैसे आप कहते हैं ना अव्वल दोयम सोयम, जैसे पहला दूसरा तीसरा, हम लोग ये पीछे भी देख चुके हैं ना अल्लाह के नाम के साथ। अब यहाँ सोचिए कि अव्वल से पहले जीरो होगा, तो जब अव्वल आता है ना उधर, तो इधर आखिर आ जाता है। मुराद क्या है कि आखिर वो हस्ती कि जिसके बाद कोई चीज़ पीछे आने वाली नहीं है, किसी ऐसी चीज़ को आप तसव्वुर में नहीं ला सकते, सबसे आखिर। और ये वो चीज़ है, ये वो नाम है, अव्वल के मुकाबले पे बोल दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। और इसे ज्यादा हम क्या सोचें और क्या समझें, हमारे अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं है, हम तो इतना गौर व फिक्र भी नहीं कर सकते। और मैं इस नाम के बारे में जितना कल से सोचती जा रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था मैं किसी बड़े गहरे समंदर में डूब रही हूँ और मेरी अक्ल खत्म हो रही है और मेरे से कुछ हो नहीं रहा। मैं कुछ सोच नहीं पा रही, मैं इसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी जैसे वो स्ट्रकिंग होने लगती है ना, कभी आपके कंप्यूटर के अंदर कोई आप हैवी फाइल डाउनलोड करें तो सारी विंडोज बिल्कुल स्टक हो जाती हैं। इस तरह मेरे आपके इस दिमाग की विंडो में एकदम ऐसे जमूद आने लगता है जब हम अपने प्यारे मालिक के किसी मामले के बारे में गौर व फिक्र करने लगते हैं। इसीलिए तो आप देखिए कि अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में बहुत ज़्यादा भी नहीं सोच सकते, क्योंकि आप जितना सोचते हैं आप उतना उलझने लग जाते हैं। तो उससे ज़्यादा ना रखें, बस आपका मेरा दिमाग इतना ही काफ़ी है इसमें। फिर इसी तरह आप देखिए, सबसे आखिरी कलाम के लिए भी आता है सूरत अल आराफ में, अल्लाह ताला जन्नतियों के जन्नत में जाने के बाद उनके सबसे आखिरी कलाम के बारे में क्या कहते हैं, वाखिरु दावाहुम अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जन्नत में जन्नती दाखिल हो रहे हैं, ज़रा सोचिए एंट्री है। और जब भी कहीं आप जाते हैं आप बहुत कॉन्शियस होते हैं, और पहला जुमला जन्नतियों के मुंह से जो निकलता है वो क्या है कि आखिरी दावा, आखिरी पुकार क्या कि सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है। क्या पता चला, वहां एक जुमला सूरह आराफ में आता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, सारी तारीफ़ उस ज़ात के लिए जिसने हमें इसकी हिदायत दी, वरना हम कहाँ थे, वमा कुन्ना लिनहतदिया, हमें तो हिदायत नहीं मिलनी थी, वी डोंट नो द राइट वे टू गो टू जन्ना, हमें तो सुबुल सलाम नहीं पता था, हमें तो सबीरुल जन्ना नहीं पता था। और यहाँ आखिरु दावाहुम अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पहली बात भी जन्नतियों की अल्लाह की तारीफ़ों की और आखिरी बात भी जन्नतियों की अल्लाह की तारीफ़ों की। और इसी तरह से आखिर कलस मुकामात के अतबार से भी आखिरी होता है। आप किसी को किसी जगह मिले, आप कहते हैं आखिरी दफ़ा मैं वहाँ मिली थी, अल्लाह के नबी ने एक आखिरी खुतबा दिया, हज्जतुल विदा का खुतबा, सारी बातों का खुलासा। इस्तलाही मानी देख लीजिए, वो तब भी होगा जब सब खत्म हो जाएंगे। सोचिए, हर चीज़ मादूम हो जाएगी, अदम की तरफ चल पड़ेगी, फना की तरफ हो जाएगी, मगर वो मौजूद रहेगा। किसी चीज़ के साथ उसका तकाबुल नहीं किया जा सकता। आइए ज़रा थोड़ी सी तारीफ़ें देख लेते हैं डिक्शनरी के अतबार से। जैसे इमाम जुज्जाज हैं, वो कहते हैं अल्लाह ताला के इस नाम के बारे में कि ये क्या खूबसूरत नाम है और इसके अंदर क्या कुछ आपको मुझे मिलता है। और ये वो हस्ती है हर चीज़ के लिए सरचश्मा, हर चीज़ के लिए सरचश्मे कुव्वत, कुव्वत देने का रिसोर्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तमाम अशिया ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इनके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वजूद हमेशा रहेगा। अल आखिरु हुवल मुतअख्खिरु अनिल अशियाई कुल्लिहा व यबका बादहा। इमेजिन कीजिए ज़रा, इस तारीफ़ को ज़रा एब्जॉर्ब करें। हर चीज़ की कुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, लेकिन अल्लाह नूरु समावाती वाल अर्थ, सूरत नूर में हम पढ़ते हैं, एक नाम भी आएगा अल्लाह कल नूर। बिल्कुल इसी तरह सोचिए, हर ताकत उधर से मिलती है। दुनिया में हमें किस किस्म की कुव्वतें चाहिए, आप देखिए कि हमें सोचने की कुव्वत, खाने की कुव्वत, चलने की, बैठने की, काम करने की, बातें करने की, बोलने की, सुनने की, देखने की, ये सारी कुव्वतों का रिसोर्स अल आखिर है। क्योंकि जो मेन रिसोर्स होता है ना, उसमें चीज़ रहती है, बाकी ख़त्म होती है। मिसाल देती हूँ कि नीचे टंकी है, उसमें पानी है, आप उसको मोटर के ज़रिए पानी चढ़ाकर ऊपर एक टंकी में भर देते हैं और थोड़ी देर बाद वो ओवरफ्लो हो जाती है और लोग इस्तेमाल करते हैं। इतने में पता चलता है ओहो पानी नहीं आ रहा, पता चला टंकी ख़त्म हो गई, क्या करते हैं, फिर मोटर चलाते हैं, नीचे से पानी को लेकर आते हैं। जो मेन स्विच, जैसे अब वापडा का नाम कहिए तो मेन बिजली का सोर्स तो उधर है ना, आपके मेरे घर से बिजली जाए फ़ौरन जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या हुआ, वहाँ तो कोई ट्रांसफार्मर नहीं ख़राब हो गया। तो जो मेन रिसोर्स है ना, वो ख़त्म नहीं होता। पानी पीछे से जहाँ से आ रहा है वहाँ, सोना पीछे से निकल रहा है, नमक पीछे से निकल रहा है, चांदी हीरे मोती निकल रहे हैं, हर चीज़ का मेन रिसोर्स अल आखिर है जी। और एक और तारीफ़ ले लीजिए, अल आखिर हुवल बाकी बाद फनाइल खल्की वलैसा मानल आखिरी मालहू अल इंतहाउ कमा लैसा मानल अव्वली मालहू अल इब्तिदाउ फहुवल अव्वल वल आखिर वलैसा लिकौनिही अव्वलुन वला आखिरुन। امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الاخر جل جلالہ وہ ذات ہے جو مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گی، اور الاخر کا مطلب یہ نہیں کہ جس کی انتہا اور اختتام مقرر ہو، سمجھیے گا یہ جملے کو. آپ کھانا لے کر آتے ہیں، دہی لے کر آئے، اس پہ لکھی ہوتی ہے ایکسپائریشن ڈیٹ، بریڈ کے اوپر ایکسپائریشن ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، دوائیوں پہ لکھی ہوتی ہے، نہ بھی لکھی ہو آپ کھانا پکائیں رکھ دیں کچن میں، کتنے کو دن رہے گا؟ ایک دن، دو دن، تیسرے دن تو اس کا ٹیسٹ ہی بدل جائے گا. دنیا میں ہر چیز کی انتہا ہے، الآخر کی کوئی انتہا نہیں. یہ سمجھیے، یعنی الآخر جس کی انتہا نہ ہو. بچہ پیدا ہوتا ہے ہم سب کو پتا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد چلے، پھر اس کے بعد بیٹھے گا، پھر لیٹ رہے، پھر چلے گا، پھر بھاگے گا، پھر 10 سال کا، 15 کا، 20 کا، پھر 60 کا، پھر 70 کا، پھر انتہا، کہیں بھی رک جائے گی گھڑی چلتی چلتی. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں الآخر لفظ میں موت کا تصور ہی نہیں ہے، فنا کا تصور ہی نہیں ہے. جیسا کہ الاول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی کوئی ابتدا ہوئی ہو، پس معلوم ہوا کہ جب کوئی نہ تھا اور کچھ بھی نہ تھا، جب بھی وہ موجود تھا اور جب کوئی نہ رہے گا اور کچھ نہ رہے گا، اس وقت بھی وہ اللہ جل جلالہ موجود رہے گا. اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کو بس سن کے نا اتنے کہہ دیا کرے کہ اللہ تجھے پہچان گئی، مان گئی تجھے، دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے، اور کیا چاہیے. کہتے کہ ایک بزرگ تھا تو اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، تو جب قرآن کھولتا تھا نا تو اس کی ہر لائن پہ انگلی پھیر کر کہتا، اے رب جو آکھے سچ آکھے، اے رب جو آکھے سچ آکھے. ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ جملہ کئی قرآن پڑھنے والے جو قرآن خانیوں میں کئی کس بارے پڑھ جاتے ہیں لیکن تجوید ہی ٹھیک نہیں، ان کے اوپر بھاری پڑ جائے، کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا قرب ملنا تھا وہ اس کو مل گیا. تو آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے بارے میں جان کر اگر اس سے تعلق محسوس ہونے لگا ہے، ہر ضرورت پہ محسوس ہوتا ہے، تو مان لیجئے وہی ہے رب. پھر اس طرح آپ دیکھیں، الآخر تمام موجودات کے فنا ہونے کے بعد بھی وہ باقی رہے گا، تو سوال پیدا ہوتا ہے ایک ہمارے ذہنوں میں، ہم تو جنت اور جہنم کے بارے میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہم فیہا خالدون، لوگ کھڑے کرتے ہیں یہ سوال، کہتے ہیں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کبھی ختم نہیں ہوگی، نیور نیور اینڈنگ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کبھی نہیں. تو پھر جنتیوں کے لیے بھی قرآن میں یہی ہے، ہم فیہا خالدون، جہنمیوں میں بھی یہی ہے، فرق کیا ہے؟ پہلے میرا سوال سمجھیے، کیونکہ ذرا سا ٹرکی کویسچن ہے. بہت سارے لوگ جب اپنی عقل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس قسم کے سوالات بھی اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں صرف الآخر، جس کو فنا نہیں، جس کو زوال نہیں، جس کی انتہا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی آپ قرآن میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، تو پھر فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو فرق سمجھیے گا، الآخر جنتیوں اور جہنمیوں کو باقی رکھے گا، الآخر اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے باقی رہنے والا ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کو کہ کوئی اس کو باقی رکھے، لیکن جنتیوں اور جہنمیوں کو الآخر باقی رکھے گا. چلیے ایک اور آسان جملہ بولتی ہوں، اگر الآخر جنتیوں اور جہنمیوں کو باقی نہ رکھے تو وہ بھی فنا ہو جائیں، یعنی انسانوں کو باقی رہنے کے لیے الآخر کی اجازت کی ضرورت ہے. الآخر رکھے گا تو وہ رہیں گے، لیکن الآخر کو بالکل ضرورت نہیں کہ کوئی اس کو باقی رکھے، تو پھر فائل وہی ہے نا الآخر. پھر اس طرح یاد رکھیے، جیسے جنت والے بھی باقی رہیں گے، جہنم والے بھی، تو اس طرح جنت کی نعمتیں بھی باقی رہیں گی، تو الآخر کا ایک اور کام کیا ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں کو باقی رکھے گا. ہم فیہا خالدون، حدیث میں آتا ہے جنت کے درختوں پر سے جب کوئی پھل توڑ کے کھا لیا جائے گا تو اس کے بعد واپس دوبارہ اس کے اوپر ایک نیا پھل لگ جائے گا، یعنی ساتھ ہی ساتھ رینوویٹڈ ہوتی جائیں گی. ویتفجرونہا تفجیرا، اور اکلوہا دائمن، دائم رہنے والے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قطوفہا دانیہ، پک پک کے پھل نیچے گر رہے ہوں گے، بالکل بندے کے منہ کے پاس آ جائیں گے. اور اسی طرح پھر الآخر کون ہے؟ جو جہنم کے عذابوں کو بھی باقی رکھے گا. جی، اگر جنت کی بقا اور جنت کا دوام خوشی دیتا ہے تو یاد رکھیے کہ جہنم کے عذاب کو بھی باقی رکھنا الآخر کا کام ہے. دیکھیے نا، اینڈ پہ کس کو دروازہ بند کرنا ہے؟ وہ وہاں رہے گا نا، کوئی بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، مہمان ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں، پیپر ہو رہے، ٹیسٹ ہو رہے، آپ بیٹھے ہیں کیونکہ آپ نے ڈور لاک کر کے جانا ہے. آپ ہی چلے گئے تو پیچھے سے جو مرضی کو کرے، अल आखिर का लफ्ज़ बता रहा है कि जन्नतियों और जहन्नमियों को हमेशा रखने के बाद जन्नत और जहन्नम को हमेशा उसके मुकर्रर मियार पे कायम रखने का काम अल आखिर के है। और यहाँ मुझे वह हदीस याद आ रही है, खुलासा बताऊँगी सिर्फ इस वक्त। अल्लाह सुबहाना तआला ने मलकुल मौत को एक काम दिया हुआ है, सारी रूहों की जान निकालने का, और वो ये काम कर रहे हैं। हर दिन देखिए कितने लोग आते हैं, वुक्किल अलैकुम, अल्लाह कहते हैं तुम पर एक मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला, हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। क्यामत के करीब जब क्यामत आएगी, पहला सूर भी फूक जाएगा, दूसरा भी फूकेगा, सब जिनको मरना था मर जाएंगे। तो उसके बाद रिवायात में आता है कि मलकुल मौत अल्लाह ताला से कहेंगे कि अल्लाह आपने मुझे जो काम सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया। सारी मखलूक मर गई। कहा अच्छा सब मर गए? हाँ सारे, अर्श के फरिश्ते, अर्श वाले, इवन जिन फरिश्तों ने अल्लाह का अर्श थामा उनको भी मौत आएगी। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि 8 फरिश्ते क्यामत के दिन उठाए होंगे, हत्ता के जिब्राइल को भी मौत आएगी, यानी हर नफ्स को, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत आने वाली है, तो आएगी मौत। अच्छा ये भी गए, वो भी गए, वो भी गए, तो आपको पता है उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे? क्या मलकुल मौत अब तू अपनी भी जान ले ले। और इसको सुनकर फिर वो एक ऐसी चीख मारेंगे कि अगर उस वक़्त कोई जी नफ्स यानी कोई जानदार मौजूद भी होता तो उसकी चीख से वो भी मर जाता। लेकिन उसके बाद भी अल आखिर बाकी होगा, अल आखिर को कुछ भी चीज़ नुकसान नहीं देगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। और हदीस में आता है कि जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में, तो अल्लाह तआला मौत को भी मेढ़े की सूरत में ज़िबह कर देगा। तो अल बाकी तो आएगा, अल आखिर भी आखिर तक रहेगा। ये जहन्नम में जलते हुए लोगों को भी देखेगा और जन्नत में जन्नतियों को नेमतों से फ़ायदे उठाते हुए भी देखेगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल आखिर जब मौत को मेंढे की सूरत में ज़िबह करेगा तो आपको पता है उस वक़्त क्या होगा? खुशी से अगर कोई मर सकता तो जन्नती मर जाते कि हाय अब मौत नहीं क्योंकि चख चुके, और जहन्नमी अगर खौफ से मर सकते तो मर जाते कि हाय अब ऐसे ही पड़े रहेंगे हम, क्यों बार बार जाके मालिक से कहेंगे या मालिको ओ दो रब्बना, पुकार अपने रब को लियक्दी अलैना, हमारा कोई फैसला कर दे। तो याद रखिए इस अल आखिर के साथ ताल्लुक जुड़ गया तो आप तो आखिरत परस्त हो जाएंगे। आइए देखते हैं कुरान पाक में ये नाम कहाँ है। एक ही बार है कुरानी आयात की रोशनी में, अगर डायरेक्ट लफ्ज़ अल आखिर देखें तो सिर्फ एक ही बार है, हुवल अव्वल वल आखिर, और यह है सूरत अल हदीद की आयत नंबर 3। वही अव्वल वही आखिर, वही इब्तदा वही इंतहा। और अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं, अगर आप पूरी आयत देखें तो इसमें 4 नाम इकट्ठे आते हैं, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। वही अव्वल भी है और आखिर भी, जाहिर भी है और मख्फी भी, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी आयत है, कितनी बोझल बात है। जिसको अल्लाह ताला के इन नामों का पता चल जाए उसके बाद तो ये हो नहीं सकता कि वो सर भी उठा सके। इसी तरफ देखिए कि अल्लाह ताला की ये सिफत कि उसने आखिर तक रहना है या बाकी रहना है, तो सूरत अर्रहमान की आयत 26-27, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जो मखलूक ज़मीन पर है सबको फना होना है और तुम्हारे परवरदिगार ही की ज़ात बाबरकत जो साहिबे जलाल व अज़मत है बाकी रहेगी। तो अल्लाह ताला इस आयत में हमें ख़बर देते हैं कि फना से अगर कोई आज़ाद है तो वो अलाखिर है, फना किसी को छू नहीं सकती तो वो रब्बे कायनात अल आखिर है। तो अल आखिर के लिए क्या करना है? बाकी रहने वाली नेकियां करनी है जी। और याद रखिए कि बाकी रहने वाली सिर्फ एक ही जात है, सूरत कसस आयत 88, कुल्लु शयीन हालिकुन इल्ला वजह, उसी की जात पाक है, इसके सिवा हर चीज फना होने वाली है, इसी का हुक्म है, लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन, और इसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। तो जब आपका लफ्ज़ अल आखिर के साथ ताल्लुक़ जुड़े तो पहली तो बात है कि ये भूल जाएं कि आप हमेशा रहेंगे, मुझे मौत नहीं आएगी, मैंने वैक्सीन लगवा ली, मैंने इंश्योरेंस करवा ली, बचपन में मुझे पोलियो के टीके लग गए, मुझे चीचक लग गई, बीसियों रेमेडीज है, इंसान करता है, करनी भी चाहिए, लेकिन ये सोच लेना कि मैं मरूंगा नहीं। खुराक खा लीजिए, विटामिन्स ले लीजिए, फिश ऑयल पी लीजिए, आप थ्रान पी लीजिए, क्या कुछ नहीं, लोग कहते कि हम बच जाएं, फिर क्या होता है? और कितनी प्रिकॉशंस कर लीजिए, होने वाली काम होके रहते हैं, क्योंकि अलाखिर की हस्ती वही सारे कामों पे है। फिर सरस अलाखिर का लफ्ज़ अगर आप हदीस की रोशनी में देखें तो आपको इसमें बहुत प्यारी दुआएं मिलेंगी, क्योंकि ये वो नाम है जिसके साथ ताल्लुक़ जोड़कर अगर आप दुआ के लिए हाथ खड़े कर दें तो आपकी दुआ में असर पैदा होगा। रिवायत इमाम अहमद, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने अबी शैबा और बहकी में। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ख़ादिम की ज़रूरत का ज़िक्र किया। बड़ा मारूफ वाक़ आपने बहुत दफ़ा सुना हुआ है कि जब हज़रत फातिमा के हाथों में छाले पड़ जाते थे चक्की पीस पीस कर, तो एक दिन अपने वालिद के पास गईं और कहने लगीं कि कोई गुलाम दे दीजिए, आपके पास तो आते हैं और माल गनीमत में आते भी थे, ये भी नहीं कि नहीं आते थे। तो बेटी ने जब गुलाम मांगने की नीयत की बाप के पास, और वो बेटी कि जिस बेटी को आप कह सकते हैं कि सैयदतु निसाउल जन्ना, जन्नती औरतों की सरदार बेटी है, और जब वो लेने जाती है तो उसको क्या मिलता है, आप सुन के देख लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा। आपने नसीहत फरमाई कि ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सबई व रब्बल अर्शिल अजीम, रब्बना व रब्ब कुल्ली शैइन, मुंजिलत तौराती वल इंजीली वल फुरकान, फालिकल हब्बी वन नवा, आऊज़ु बिका मिन शर्री कुल्ली शैइन, अंत आखिज़ुम बिनासियतिही, अंत अलव्वलु फलैसा क़ब्लक शैउ, व अंत अलआखिरु फलैसा बादक शैउ, व अंत अज़्ज़ाहिरु फलैसा फ़ौक़क शैउ, व अंत अलबातिनु फलैसा दूनक शैउ, इक़्ज़ियन्निद्दैन वाग़निनी मिनल फ़क़्र। ये दुआ है, आप नोट कीजिए, क्योंकि आपने अमूमन दुआओं में वो पढ़ी है जिसको तस्बीहात फातिमी कहते हैं लोग, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, वो भी है, लेकिन ये रिवायत सही मुस्लिम में मौजूद है 6889, कि आपने अपनी प्यारी बेटी को क्या खूबसूरत तरीका सिखाया। अल्लाह करे आज भी माँ बाप अपनी बच्चियों को ऐसी ही तरबियत करें। आप जरा इस दुआ के एक एक लफ्ज के ऊपर गौर कीजिए, या अल्लाह सातों आसमानों के रब, इस बड़ाई को अपने दिल पे लीजिए, और अर्शे अजीम के रब हमारे परवरदिगार और सब चीज़ों के परवरदिगार, तौरात और इंजील और कुरान उतारने वाले, दाने और गुठली को ज़मीन से उगाने वाले, मैं हर एक चीज़ जो तेरे कब्ज़े में है उसके शर से तेरी पनाह चाहती हूँ। तू अव्वल है, तुझसे पहले कोई शय नहीं थी, तू आखिर है, तेरे बाद कोई शय नहीं, ये है अलाखिर, तू जाहिर है, तुझसे ऊपर कोई शय नहीं, तू बातिन है, तुझसे परे कोई शय नहीं, मेरा कर्ज उतार दे और मुझे तंग दस्ती से निजात दे दे। गोया कि इस मुबारक दुआ में नबी सल्लम ने इस आयत की बड़ी उम्दा तफसीर फरमा दी कि तू ही आखिर है और तेरे बाद कोई नहीं आने वाला। तो क्या पता चला, ये दुआ मांगी है। आप देखिए ये दुआ आपको दो तीन बार मिली है अभी तक अल असमाल हुस्ना में, और वैसे भी हमने पढ़ी है, और आप देखते हैं कि इस दुआ के अंदर एक अजीब सा कह लीजिए कि हुसन है। पहले तो आप अल्लाह ताला को रब्बस समावाती वाला रब्बल अर्दी, आप देखिए रब्बल अर्श अज़ीम, यानी एक गो में सारे आसमान सारी ज़मीन ने, और अर्श अज़ीम की बात हो गई। इतना गनी है आपका बादशाह, आपका रब इतना अमीर है। आप देखिए माँ बाप के पास 4 पैसे आ जाएं, बेटियां कहती हैं क्या है दे दें, लोग कहते हैं कोई नहीं जहेज में इनको जो मर्जी दे दें। जब आपने अपनी प्यारी बेटी फातिमा को ये दुआ सिखाई होगी तो असल में क्या आप अपनी बेटी को अकीदा तौहीद पे पुख्ता करना नहीं था कि बेटी अपने बाप से क्या मांगती हो, उस रब से मांगो जिसके पास आसमानों जमीन के बड़े बड़े खजाने हैं, फिर हर चीज का रब, तेरा भी और हर चीज का, गुठलियों को फाड़ने वाला, दानों को फाड़ने वाला, तौरात इंजील और फुरकान को उतारने वाला, इतना बड़ा रब है, तू उससे नहीं मांग रही, मेरे पास क्यों आ गई? और आप देखिए कि अच्छी बेटियां माँ बाप से नहीं मांगती, वो बताती भी नहीं उनको, उनको जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उनका रब उनके माँ बाप से ज्यादा उनकी केयर करता है, उसको उनकी जरूरियात का पता है। जो औरत सब्र शुक्र के साथ मेहनत से अपने मर्द की कमाई पे गुजारा कर लेती है, अल्लाह वैसे ही उस घर में बरकत डाल देता है। तो ख़वातीन को शुक्र गुजारी के साथ, थोड़े से माल के साथ रहना चाहिए, अपने माँ बाप की दौलत का कोई मान या कोई ताना नहीं रखना चाहिए अपने शौहरों के लिए कि वो किसी भी ऐसी चीज़ का शिकार हो जाएं कि जो बाद में फिर उनको मज़ीद तलखी की तरफ ले जाए और हालात घर के ख़राब हो। फिर आप देखिए कि ये जो कहना है ना, आउज़ु बिका मिन शर्री कुल्ली शैनन ताख़िज़ुन बिनासियती, ये भी नोट कीजिए। अल आखिर के हाथ में आपके मेरे नसीब हैं, किस्मत तकदीर आपकी अकलौती बेटी आप सदमे से नहीं बचा सके, अकलौता बेटा आप मौत से नहीं बचा सके, आपका बेटा भी अकलौता फिर आगे बच्चे भी नहीं हुए आप नहीं बचा सकते। अल आखिर के हाथ में सबके आखिरी नसीब है, हर चीज को अल्लाह से जोड़ दिया करें, आखिरी चीज आखिरी लुकमा, बल्कि मैं सोच रही हूँ ना लफ्ज आखिर, आखिरी लुकमे में बरकत है, खाने के अंदर बिल्कुल दरमियान में बरकत उतरती रहती है, आखिर में साफ कीजिए। हम अक्सर लुकमे बरकतों वाले छोड़ देते हैं, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल आमालु बिल खवातीम, आमाल का खात्मा जो है ना वही असल, आपका मेरा खात्मा बिल खैर हो। ये अल आखिर के साथ ताल्लुक जोड़कर कहिए कि अल्लाह मरते वक्त कलमा नसीब कर दे, खात्मा बिल खैर हो, मौत की हिचकियों में तू हमें थाम लेना। अल्लाहुम्मा इन्नी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। फिर आप देखिए कि अल्लाह का अव्वल कहने के साथ आखिर कहना, और तेरे बाद कोई नहीं है और तेरे से ऊपर कोई नहीं है, हर चीज़ तो बंदा खोल के रखता है, और एंड पे दियन्नत दें। पीछे आपको बताया था ना कि कर्ज की अदायगी के लिए भी यही दुआ है, आज कर्जों में डूबे हुए लोगों को ये दुआएं मांगने की जरूरत है, और अपने रब को भी कह दें कि ऐ मालिक तो अल आखिर है ना, तो हमारे कर्जों की इंतहा कर दे, हमें मौत से पहले क्या जिंदगी में इससे निकाल दे। देखिए एक छोटी सी बात बता दूं, मौत के बाद तो बड़ी सख्ती है कर्ज के नाम पे, रूह नहीं निकलती, रूह निकल जाए तो आसमानों पे अटकी रहती है। अल्लाह के नबी उस बंदे की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे खुद, दूसरों को कहते थे आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एक ऑनर होती है कि अल्लाह का नबी आपकी नमाज पढ़ाए, किस पे, जिसके ऊपर कर्ज है। तो आज नियत कीजिए, चलिए अल आखिर के नाम पर अपने आप को जोड़ते हैं। आज मैं नियत करती हूँ कि मैं आखिरत के घर को लेने के लिए और अल आखिर के सामने खड़े होने की नीयत से अपने दुनिया के हर उस कर्जे को ख़त्म करती हूँ जो सिर्फ ख्वाहिश के नाम पे, वो सिर्फ ज़रूरत के नाम पे, और फिर कर्ज वो भी जिसके अंदर नाफरमानी आ जाए, कैसे मुंह दिखाएंगे हम। और अपनी ज़िंदगी में तो ख़त्म होता कर्ज मैंने कमी लोगों का देखा, पहले माँ बाप जाते थे विरसा मिलता था, अब माँ बाप जाते हैं तो कर्जे की किस्तें मिलती हैं। दुआ कर लीजिए अल्लाह मरने से पहले ये सब कुछ चुका दे, छोटे में आ जाइए, वल्लाह की एंड पे आपने छोटे पे ही आना है, आपसे नहीं संभलना, आप सीढ़ियाँ चढ़ के कई के दिन तक ऊपर नहीं जाते, मैंने खवातीन को देखा महल नुमा घर है, कहती 2 माह आगे ऊपर नहीं गए, मासी जाती सफाई कर आती, मैंने कहा सफाई किसके लिए करते हैं, बस आदत है, अब मासियाँ रखी हुई हैं, 8-8 बेडरूम पड़े हैं घर में, खाली पड़े हैं, तो क्या ज़रूरत है इतना अपने आप को सताने की और खपाने की। तो हमेशा तंग दस्ती से निजात के लिए जितनी चादर उतने पाँव फैलाइए।